दिवाली से एक रात पहले की बात थी। हम पांचों मीरा के बेडरूम में गद्दों और कुशन पर पसरे हुए थे। पिछले एक घंटे से हम भूतों की कहानियां सुना रहे थे, उल्टे पैरों वाले राक्षसों की, पुराने कुएं पर भटकने वाली सफेद कपड़ों की औरत की, और उन अनदेखी चीजों की जो अंधेरा होने के बाद बरगद के पेड़ों से फुसफुसाती थीं। हर कहानी के बाद हम हंसते कि ये सब कितना बेतुका है, और सोचते कि आज के जमाने में भी कोई ऐसी बेवकूफियों पर कैसे यकीन कर सकता है। तुम सब बहुत झूठी हो, प्रिया ने अपनी लंबी छोटी कंधे के पीछे फेंकते हुए कहा। तुम सब भूतों से डरती हो। मैं नहीं डरती, हम में सबसे छोटी अंजलि ने कहा। प्रिया ने नाक सिकोड़ कर कहा। तो साबित करो, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं। मिर्जा रोड वाले मुस्लिम कब्रिस्तान में जाओ, आधी रात को, अकेली। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिस कब्रिस्तान की प्रिया बात कर रही थी वह बहुत पुराना था, बंटवारे से भी पहले का। जंग लगे लोहे के फाटकों के पीछे टूटी फूटी कब्रों का एक भुला दिया गया टुकड़ा, जहां हमारे मोहल्ले का कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। यहां तक कि आवारा कुत्ते भी उसके पास नहीं भटकते थे। वो बहुत दूर है, मीरा ने विरोध किया, और वहां जाना खतरनाक है। इतना भी दूर नहीं है, बस मान लो कि तुम डरपोक हो, प्रिया ने ताना मारा। मैं जाऊंगी, मैंने खुद को कहते सुना। मेरे मुंह से निकले हुए शब्द मुझे भी उतने ही चौंकाने वाले लगे जितने बाकी सबको, लेकिन प्रिया की वह व्यंग्य भरी मुस्कान मेरे भीतर की जिद को भड़का चुकी थी। और इससे पहले कि मैं समझदारी से दोबारा सोच पाती, चुनौती स्वीकार हो चुकी थी। यह साबित करने के लिए कि मैं सचमुच वहां गई थी, मुझे मीरा के भाई का क्रिकेट स्टंप कब्रिस्तान के ठीक बीच में सबसे पुरानी कब्र के ऊपर गाड़ना था, उसी कब्र पर जिसकी लाल संगमरमर की दरकी हुई शिला थी। रात 11:47 पर मैंने सबको अलविदा कहा और मीरा के घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। प्रिया को छोड़कर बाकी सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही बेवकूफी भरी मुस्कान थी, मानो कह रही हो, बस देखना है कि तुम हारकर चीखती हुई कब हमारी बाहों में वापस भागती हो। सड़कें मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुनसान थीं। अगले दिन की दिवाली की तैयारियों से पहले ज्यादातर परिवार सो चुके थे। कुछ आवारा कुत्ते चमकती आंखों से मुझे गुजरते हुए देखते रहे, लेकिन कोई मेरे पीछे नहीं आया। हवा में गेंदे के फूलों और बारूद की मिलीजुली गंध थी। कब्रिस्तान के फाटक पर जंजीर बंधी थी, लेकिन वह इतनी ढीली थी कि मैं शरीर को तिरछा करके उसके बीच से निकल सकी। अंदर का अंधेरा डराने वाला था। सड़क की बत्तियों की रोशनी यहां तक नहीं पहुंचती थी, और चांद बस एक पतली सी धार था जो बादलों के पीछे लगभग बेकार हो चुका था। मैंने फोन की टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी जमीन से दांतों की तरह निकली हुई टूटी कब्र की शिलाओं पर पड़ी। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी, कहीं छिपे हुए गड्ढे थे, कहीं फैली हुई बेलें जिन पर पैर पड़ते ही गिरने का खतरा था। मैं बहुत संभल कर कब्रों के बीच से आगे बढ़ी। कुछ पर चांद और सितारे बने थे, जबकि कुछ सिर्फ मिट्टी के नंगे टीले थे जो उम्र के साथ धंस चुके थे। हाथ में पकड़ा क्रिकेट स्टंप मुझे बहुत हल्का लग रहा था, लगभग बच्चों के खिलौने जैसा। मुझे कुछ भारी, कुछ ज्यादा मजबूत चीज लेकर आनी चाहिए थी। पुरानी लाल कब्र ठीक वहीं थी जहां हमने उसे दिन की रोशनी में देखा था, बिल्कुल बीचों बीच नीम के पेड़ की सूखी कंकाल जैसी शाखाओं के नीचे। संगमरमर की शिला बीच से फट चुकी थी, और उस पर कभी जो भी नाम खुदा रहा होगा, समय और मौसम उसे बहुत पहले मिटा चुके थे। कब्र बाकी कब्रों से बड़ी थी, शायद कभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की रही होगी। अब वह भी यहां की हर दूसरी चीज की तरह भुला दी गई थी। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। मेरा सूती दुपट्टा मेरे चारों ओर जमीन पर फैल गया। वह बिल्कुल नया था, खास दिवाली के लिए खरीदा गया था, गहरा लाल, उस पर सुनहरी कढ़ाई, मां का दिया हुआ तोहफा। मैंने उसे इसीलिए पहना था ताकि मैं खुद को ज्यादा बहादुर और बड़ी महसूस करूं। लेकिन अब वही परेशानी लग रहा था, बहुत ज्यादा कपड़ा जिसमें पैर फंसना बहुत आसान था। मिट्टी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त थी। मुझे दोनों हाथों और अपने पूरे वजन का इस्तेमाल करते हुए क्रिकेट स्टंप को आगे पीछे हिलाकर जमीन में धंसाना पड़ा। मेरे चारों ओर कब्रिस्तान पूरी तरह खामोश था। न झिंगुरों की आवाज, न दूर से आती गाड़ियों की, कुछ भी नहीं, बस मेरी अपनी सांसों की आवाज और मिट्टी से रगड़ खाती लकड़ी की धीमी खरखराहट। आखिरकार स्टंप इतना गहरा ढांस गया कि सीधा खड़ा रह सके। मैंने उसे छोड़ दिया और एड़ियों पर पीछे बैठ गई, जीत की खुशी से भरी हुई। मैंने कर दिखाया था। सबूत के तौर पर तस्वीर लेने के लिए मैंने फोन निकाला। तभी मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं सकी। किसी चीज ने मुझे जमीन से जकड़ रखा था। मेरा दिल जोर से उछला। मैंने और जोर लगाया लेकिन जिसने भी मुझे पकड़ा था वह छोड़ नहीं रहा था। मैं झटके से पीछे मुड़ी और फोन की रोशनी नीचे डाली। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। जल्दबाजी में मैंने क्रिकेट स्टंप अपने दुपट्टे के किनारे के आर पार गाड़ दिया था। कपड़ा जमीन से ऐसा जकड़ गया था जैसे किसी हाथ ने मुझे पकड़ रखा हो। अपनी बेवकूफी पर मुझे लगभग हंसी आ गई। तभी मैंने वह आवाज सुनी, मेरे ठीक पीछे से आती हुई सांस लेने जैसी आवाज। मैं जम गई। हवा बदल चुकी थी, अचानक और ठंडी हो गई थी। थोड़ी देर पहले का वह पूरा सन्नाटा अब स्वाभाविक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान खुद अपनी सांस रोककर बैठा हो और मुझे देख रहा हो। मैंने स्टंप खींच कर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, यह सोचकर कि जरूरत पड़ी तो उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगी। लेकिन मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। सांस लेने की वह आवाज जारी रही, धीमी, गीली और मेहनत से भरी हुई, जैसे कोई अपने खराब हो चुके फेफड़ों में हवा भरने के लिए संघर्ष कर रहा हो। कौन है? मेरी आवाज बहुत धीमी निकली, किसी बच्चे जैसी। सांसों की आवाज बंद हो गई। एक हाथ मेरे कंधे पर आकर टिक गया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि उनकी ठंड मुझे अपने कमीज के पार, त्वचा के भीतर, हड्डियों तक महसूस हुई। मैं जानती थी, पूरी तरह जानती थी कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा जो मेरा दिमाग तोड़ देगा। मेरे कंधे पर रखा हाथ कस गया, फिर दूसरा हाथ भी आ गया। अब दोनों मुझे नीचे दबा रहे थे, जमीन की ओर, उस कब्र की ओर, उस मिट्टी की ओर जो मुझे निगल लेने वाली थी। मैंने वही किया जो उस पल मेरे दिमाग में आया। दोनों हाथों से अपना दुपट्टा पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। नाजुक कपड़ा फट गया, कढ़ाई टूटती चली गई और उसकी आवाज ऐसी लगी जैसे मांस फट रहा हो। मैं आजाद थी, मैं भागी। मुझे याद नहीं कि मैं उन कब्रों के बीच से रास्ता कैसे निकाल पाई। मुझे यह भी याद नहीं कि मेरा टखना कैसे नहीं टूटा या मैं किसी कब्र की शिला से मुंह के बल कैसे नहीं टकराई। मुझे बस फाटक याद है, उसके बीच से तिरछा होकर निकलना याद है, लोहे का मेरे कपड़ों में अटकना और मेरी बांहों को खरोंचना याद है। मुझे बस इतना याद है कि मैं तब तक दौड़ती रही जब तक मेरे फेफड़े जलने नहीं लगे, जब तक मैं दोबारा मिर्जा रोड की स्ट्रीट लाइटों के नीचे नहीं पहुंच गई, उस दुनिया में वापस जहां सब कुछ फिर से समझ में आता था।